गीता के 18वें चैप्टर की चर्चा हम कर रहे थे। आज 7th श्लोक मेरे साथ मिलकर बोलिए। भद्रे जरा इसको बंद कर लेंगे, किसको पता? वो सतीश जी को पता होगा। हाँ, बोलिए। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणोनुपपद्यते, मोहात्तस्य परित्याग स्तामस परिकीर्तितः। त्याग की बात कर रहे थे, रिनाउंसिएशन। तो वो त्याग क्या चीज है? जो लोग संसार छोड़ के संन्यास ले लेते हैं या किसी भी तरह के कोई चीज त्याग देते हैं, डोनेट कर देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो वो कहता है जो त्याग, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, जो हमें किसी भी हालत में करना है, उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो वो सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ गिविंग अप होता है। सिर्फ तमोगुणी लोग, जो बहुत वर्स्ट टाइप के लोग हैं, वो त्याग के नाम पर कि भाई मुझे ये संसार सब बेकार लगता है, तो ये संसार को छोड़ने के नाम पर सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ने का अर्थ है कि वो इवन जो अपनी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए वो भी छोड़ देता है। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जो भी हम काम करते हैं उसमें से कुछ काम होते हैं जो ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेटरी हैं, वी हैव टू डू इट एवरी डे एवरी टाइम। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ठंड नहीं, बारिश नहीं, मौसम नहीं, कुछ नहीं। आप बाथरूम जाना है तो हमेशा जाएंगे, भूख लगता है तो खाना हमेशा खाएंगे। इसी तरह कुछ और भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है जो हमें रोज करना है। माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, ये नहीं कि फादर्स डे के दिन करना या मदर्स डे के दिन करना है और वैलेंटाइन डे के दिन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। वो करना है तो फिर एवरीडे करना होता है। करने का अर्थ ये नहीं कि एवरीडे जाकर आप उनके पैर छुएं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके थिंकिंग प्रोसेस में वो भी होना चाहिए, आपके माँ बाप भी होना चाहिए। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, सिर्फ पत्नी या पति या बच्चे या अपने के अलावा वो भी होना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। हमारे जो कुछ भी हम करते हैं उसके सबकॉन्शियस में वो लोग भी, वो चीजें भी होनी चाहिए। जो ऑकेजनल काम है वो छोड़ा जा सकता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए हम कुछ करते हैं वो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। निषिद्ध कर्म तो एब्सोल्युटली यू नीड टू गिव अप इट। और हमारी वैदिक सभ्यता में, संस्कृति में ऐसे जो पांच, वैसे तो नहाना खाना पीना ये बताने की जरूरत नहीं है सबको, वैसे बहुत लोगों को ये भी बताना पड़ता है, पर ज्यादातर लोग ये जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं उसको भूल गए, जो उसको काउंट नहीं करते। जो हमारे कल्चर में माना जाता था, हर व्यक्ति अपने जीवन में इन पांचों चीजों को कभी भी ना छोड़े। पहला, ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर के प्रति भक्ति, ये हमारी ड्यूटी है और ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। ऑब्लिगेटरी कब बनता है? जब आपका कोई ऑब्लिगेशन है, कोई आपके ऊपर एहसान किया है, या आप उसको नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। करने से फायदा हो ना हो, ना करने से नुकसान होगा। ईश्वर की भक्ति पहली बताया कि अगर जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी ईश्वर की भक्ति काम होगी, यकीन मानिए ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये ये रिसर्च से प्रूफ हुआ है, दो तरह के चीजें। जो लोग नॉन रिलीजियस होते हैं उनका आयु भी कम होता है, लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, और लाइफ में बहुत सारा मिजरी, बहुत सारे दुख होते हैं। ऐसा नहीं कि जो रिलीजियस हैं भगवान उनके दुख दूर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुख तो दोनों तरफ बराबर होता है, पर दुख को सहने के लिए जो शक्ति होती है, जो जितना ज्यादा जेन्युइन रिलीजियस होता है, ईश्वर को मानता है, उसमें उसकी वो स्ट्रेंथ ज्यादा दिखता है। और जिसमें नहीं, जो एथिस्ट है, जो नहीं मानता, क्योंकि वो मानता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको और कहीं अपने आप को डिवोट करके मन को शांत करने के लिए रास्ता नहीं मिलता। दूसरी चीज जो आजकल रिसर्च से प्रूफ हुआ है, इवन जो लोग अनमैरिड हैं, जो बैचलर होते हैं, उनका लाइफ भी मैरिड लोगों से कम होता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल चीजें, इसमें कोई साइंस या फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी ज्यादा चीजें नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक दूसरे को सहारा देना, सपोर्टिंग ईच अदर मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली। जब सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रहता है, तो आप फिर स्ट्रेस में कम रहते हैं। अगर स्ट्रेस में जाते हैं तो जल्दी निकल आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई होता है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, दुख बांट सकते हो, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए जो मैरिड होते हैं, कंपैरिजन जो अनमैरिड हैं जिंदगी भर, उनसे ज्यादा उम्र जीतते हैं। तो बधाई हो जो शादीशुदा लोग हैं। और इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है, क्योंकि इंसान पशुओं की तरह सिर्फ खाना पेट भर जाने से या अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कर देने से उसका काम नहीं चलता। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है उसका इमोशन। अगर उसके इमोशन सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर उसके इमोशन को कहीं कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, धनी हो, पद में हो, उसका लाइफ मिजरेबल होता है। तो इमोशन, जब आप मैरिड होते हैं, आपका परिवार होता है, पत्नी या पति बच्चे होते हैं, तो आप ज्यादातर अपने इमोशन को वहां निकाल सकते हैं, आपके अंदर वो सप्रेस नहीं होता। जब भी लाइफ में कोई चीज सप्रेस्ड होता है, वो कोई ना कोई बीमारी लेकर के आपके पास आता है। दूसरा इमोशन, जब आप दुनिया में इतना बड़ा, दुनिया में बहुत सारे तरह की समस्याएं हैं, संकट हैं, लाइफ में है, सोसाइटी में है, समाज में है, प्रोफेशन में है, इवन फैमिली रिलेशनशिप में भी कभी कभी वो टॉलरेबल नहीं होता है, हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब अगर आपका इमोशन को कहां सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आपने, आप कोई डिवोटी हैं, भगवान को मानते हैं, और जेन्युइन, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो जेन्युइन होते हैं, वैसे फिजिकली आप भाग दौड़ कुछ भी करते रहिए, कितना गीता पाठ किया, कितना जप किया, कितनी पूजा पाठ किया, कितनी बार 108 बार जपा, वो ये सब मैटर नहीं करता, वो सोशियली मैटर करता है। आपके अंदर के लिए कोई फायदा नहीं होता है जब तक आप जेन्युइन नहीं करते। तो ईश्वर भक्ति से आपको वो इमोशनल एक बिग सपोर्ट मिलता है। जब आप बहुत लाइफ में प्रॉब्लम में हो, तब आप उसको टॉलरेट करने के लिए, सहने के लिए, बियर करने के लिए वो ईश्वर भक्ति आपको साथ देता है। इसलिए ये दोनों चीजें एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक लॉन्ग लाइफ जीने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो ईश्वर की भक्ति करना ये ऑब्लिगेटरी, इसीलिए कि इसको ना करने से नुकसान होता है। और स्वाध्याय करना, इसको त्याग नहीं सकते आप। आप किसी भी स्टेज पर पहुंच जाएं, ज्ञान पाने में कभी कोई कंप्रोमाइज ना करें। जहां से भी कोई नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, और किसी भी तरह का ज्ञान मिलता है, जो भी ज्ञान आपके पास आता है कभी बेकार नहीं जाता है। हो सकता है बहुत सारे नॉलेज ऐसे हो जो आपने एक्वायर किया हो या करने के लिए जा रहे हो, आपको लगता हो कि इसके मेरे लाइफ में क्या यूज होगा, मैं तो इस टाइप का व्यक्ति हूं, मेरा प्रोफेशन ये है, मैं ये हूं, इसका मेरे जीवन में क्या यूज होगा। अगर आप समझ सकते हो उस चीज को, वो ज्ञान आपको मिल जाता है, टेक इट, पैसा देकर भी लेना पड़े ले जाइए। आपको पता नहीं जीवन में किस मोड़ पर, कहां, किस रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन सा ज्ञान आपको बूस्ट करता है, आपको मजबूत करता है, आपको हेल्प करता है। ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है देवियों सज्जनों। दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है वो इग्नोरेंस, और सबसे बड़ा कोई धन है, प्रॉपर्टी है, वो है कि आपकी नॉलेज। कल और आज आपके पास हो सकता है बहुत कुछ, नुकसान हो जाए, चला जाए, नष्ट हो जाए, चोर ले जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए जो मैटेरियल प्रॉपर्टी है, पर आपके पास अगर ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उससे ज्यादा भी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हो, उससे ज्यादा नाम ले सकते हो। पर अगर आप इग्नोरेंट हैं, आपके पास कोई समझ नहीं है, सिर्फ बने बनाई चीजों पर बैठे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं कि आप इसको मेंटेन कर सकें। इसीलिए कहा कि पढ़ना लिखना, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी और ईश्वर भक्ति, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। इसी तरह नेचर के प्रति, ईश्वर नेचर के प्रति हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है। हमें रोज अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो नेचर को हार्म करे। पेड़, पौधा, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, ये हमारे द्वारा सुरक्षित हो, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें कि जो हमारे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नुकसान होता है उसकी कोई भरपाई हो सके। इसी को कहते हैं देव यज्ञ, जो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करना। वो आप बाद में बहस करते रहिएगा कि ये धुआं होता है, ये होता है, वो बाद की चर्चा का विषय है। इसी तरह पितृ यज्ञ, अपने माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके प्रति भी हमारा जो कर्तव्य है वो कोई ऑकेजनल नहीं होना हो सकता कि साल में एक बार फोन कर दिया, आठ बार फोन कर दिया। डे टू डे वो ठीक हो, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिले, उनको कोई जरूरत है फाइनेंशियली या और किसी तरह की, उसकी जरूरत की पूरा करना, उनको रेस्पेक्टेड है ऐसा फील कराना, उनके साथ बैठना, बातचीत करना, तीन चीजें जरूरी होता है यज्ञ में। साथ में बैठना, बातचीत करना, उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करना, और उनको फील कराना कि वो रेस्पेक्टेड हैं। ये तीनों जब मिल जाते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। माँ बाप के साथ करो तो पितृ यज्ञ हो जाता है। इसी तरह मनुष्य यज्ञ, संसार में बाकी लोग जिनका हमारे ऊपर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली है, उनका केयर करना, सोसाइटी को कुछ डोनेट करना, चैरिटी करना। जब हम डोनेशन या चैरिटी या टैक्स देते हैं, ये सब मनुष्य यज्ञ का हिस्सा होता है जब हम किसी के भला के लिए यूज करते हैं। और लास्ट भूत यज्ञ, ये मत भूल जाना कि सिर्फ इंसानों के कारण आपका भला हो रहा है, आपकी भला वो छोटे मोटे इनविजिबल विजिबल कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये भी करते हैं, आपको पता नहीं होता है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इन सबके प्रति जो कर्तव्य है वो जिंदगी भर आप छोड़ नहीं सकते हो। ये सबके सब नित्य कर्म है, नियत कर्म है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। एवरी वन शुड ऑल दीज थिंग्स। तो तामसिक व्यक्ति वो होता है, वर्स्ट टाइप का व्यक्ति वो होता है जो उसको रोज करने की चीजें हैं उनको भी त्याग देता है। राजसिक कौन है बोलिए मेरे साथ। दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्याग फलम लभेत्। दुखम इत्येव यत् कर्म, बहुत सारे लोग काम इसीलिए छोड़ देते हैं, या संसार छोड़ देते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको काम करना ही पसंद नहीं है। शरीर को कौन हिलाए डुलाए, बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो बहाना क्या बनाते हैं, संसार दुखमय है, संसार माया है। तो छोड़ छाड़ के आश्रम में बैठ गए, इधर बैठ गए, लोगों को थोड़ा इधर उधर बोल दिया, जो मिल गया खुश है। वो खुश नहीं है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो जो मिला ठीक है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे देखो ये हमारा मित्र है, उसने करोड़ों कमाया, हमने पैसे पैसे के चक्कर में नहीं पड़ा, हम नहीं पड़े, हमें जो मिला उसी में रह गए, हमें ज्यादा लालची नहीं है, हम तो बस त्यागी लोग हैं। त्यागी लोग हो तो पड़ोसी को देख करके क्यों ताना मारते हो कि उसने बहुत कमाया, क्योंकि पैसे खोर है, लालची है। मैं ऐसा नहीं हूं इसीलिए मेरे पास काम है। तेरे पास काम है, खुश रहो, पर तू खुश नहीं है। इसका प्रूफ यही है कि तू दूसरों को अंगुली दिखाता है कि इसके पास पैसा है तो ये खराब आदमी है, पैसे की लालच रखा, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने लालच नहीं रखा। नहीं, तू आलसी है, तेरे में और कोई बुराइयां है जिसके कारण तू कमा नहीं पाया, और जो कमाया वो तुम्हें चुभता है। मेरे पास जितना है उतने में खुश रहना ये एक बहुत बड़ी बात है, पर मैं कुछ कर नहीं पाया तो मुझे कुछ करना भी नहीं है, कुछ कर नहीं पाया, ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, आलसी हूं या जो भी हूं, और मैं छोटे में गुजारा करता हूं, पर मुझे प्रॉब्लम है, दुख होता है जब दूसरे मेरे जान पहचान वालों के पास बहुत होता है। और मैं उसको ऐसे नहीं बोलता हूं कि मैं बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, उनके पास ज्यादा क्यों, मैं उनका दोष दिखाता हूं, मैं उनकी बुराइयां करता हूं। देखो बड़ा पैसा वाला है, वो पैसे के पीछे पड़ा रहता है, मैं ऐसा नहीं हूं। भारत में आपको मिलेंगे बड़े सारे, यहां भी मिल सकते हैं, मुझे यहां का ज्यादा सोसाइटी का ज्ञान नहीं है, जो ऑफिस में काम करते हैं सरकारी ऑफिस में, देखो ये अमुक तो उसने तो देखो करोड़ों कमा लिया, बिल्डिंग बना दिया, रिश्वत खाया इसलिए ब्राइब लिया, हाँ दो नंबरी का काम किया तो बढ़ गया, मैं ऐसा नहीं किया इसीलिए जहां हूं वहीं पड़ा हुआ हूं। बात यह नहीं है कि आपको आपने रिश्वत नहीं लिया क्योंकि आप बड़े ऑनेस्ट थे। अगर ऑनेस्ट होते तो फिर खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि आप ऑनेस्टी को एंजॉय करते। जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं ना, फिर आप उसमें प्राउड फील करते हैं, फिर दूसरों से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, इवन आपके ऑनेस्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो ऑनेस्टी आपकी चॉइस नहीं थी, इसका मतलब ऑनेस्टी आपकी मजबूरी थी, आपको ऐसा मौका नहीं मिला, या तो आप में इतना हिम्मत नहीं है कि आप ले सको, पुलिस के डर से बच सको, या आपकी ऐसी कोई पोस्ट नहीं था जहां कोई आपको ब्राइब दे सके, जिसके पास है जो कर सका बढ़ गया, आप नहीं कर पाए तो आपकी जलन है, जलेसी है, वो झलकता है। तो इसीलिए वो मेरे से नहीं हो सकता, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, कौन रिस्क ले, इसीलिए मैं नहीं करता हूं, मैंने छोड़ दिया। संसार कौन संभाले, ये बच्चों को कौन पाले, अपनी लाइफ बर्बाद करे, हम तो भाई सन्यासी हैं, ईश्वर की भक्ति में रहेंगे। तो ईश्वर भक्ति आपकी एक्सक्यूज है, वो चॉइस नहीं है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप दुनियादारी के काम को करने में आपको बड़ी मुश्किल है। ईश्वर भक्ति आपने इसीलिए नहीं चुना है कि यू एंजॉय इट, आपको आज भी कोई करोड़ों दे जाए आप खुशी से उछलोगे। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो त्याग इसीलिए करता है क्योंकि उसको कष्ट पड़ता है, दुख पड़ता है, मुश्किल पड़ता है, तो राजसिक त्याग है। सात्विक त्याग क्या है? कार्यमित्येव यत् कर्म नियताम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। तो हे अर्जुन, जो बिकॉज इट्स माई ड्यूटी सो आई एम डूइंग इट, इस भाव के साथ जो ड्यूटी समझ के अपने लाइफ के सारे कामों को करता है, रिनाउंसिंग अटैचमेंट, जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसको सिर्फ त्याग देता है, और फलम इसका रिवर्ड्स क्या मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलेगा इसको करने से, उसकी चिंता किए बिना जब वो काम करता जाता है ड्यूटी समझ के, तब वो सात्विक त्याग होता है। इसका मतलब जो बेस्ट टाइप का जो त्याग है वो ये नहीं कि आप फिजिकली क्या त्यागते हो, आप फिजिकली कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मेंटली कल्टीवेट दैट इमोशन, उस इमोशन को आप कल्टीवेट करें, क्या जो भी करते हैं उसके साथ अपने डूअरशिप को लेकर मत आए। डूअरशिप मतलब मैं करता हूं, ये मेरे कारण हो रहा है, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, ये मेरे हैं, ये जो भाव है, ऐसा कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो ये सिर्फ ह्यूमन नहीं है, दुनिया में जितने भी लाइफ्स हैं सबके साथ ये अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। पर अगर कोई चाहता है कि मैं सचमुच त्याग करूं, सन्यासी बनूं, तो उसको फिजिकली त्याग करना ना करना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो मेंटली कितना डिटैच्ड हो रहा है। पहले भी हमने डिस्कस किया, लोग ओनरशिप ले लेकर के मर जाते हैं बिना स्वाद लिए, और बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। आप लाइफ को एंजॉय करो विदाउट एनी अटैचमेंट, क्योंकि जो भी हमारे पास है वो हमारा घर हो, धन हो, गाड़ी हो, पति या पत्नी हो, बच्चे हो, ये सब टेम्परेरी है। शादी से पहले ना आपका कोई पति था ना पत्नी था, 40 साल 50 साल जब तक जिंदा रहेंगे आपके साथ है, वो इंडियन है तब तो थोड़ा अमेरिकन होते, वो भी गारंटी नहीं है, क्या पता 1.5 साल के बाद कितने कौन चला जाए आ जाए, अपने 10 टेक्स्ट मैसेज का आंसर नहीं दिया तो मैटर तैयार हो गया कि अलग होने के लिए, तो वहां तो उतना भी गारंटी नहीं है, ज्यादा फ्रजाइल है। तो जो भी हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है वो बड़ा टेम्परेरी होता है, वो उससे पहले हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं था, इसके बाद भी कुछ नहीं रहेगा, जब हम मरते हैं तो हिसाब हमें अकेले देने पड़ती है यमराज से, जो हिसाब किताब होगा वो ये नहीं पूछेगा कि आप ये बता नहीं सकते हो कि अच्छा जरा मेरे पति को भी साथ बुला दो या पत्नी को भी साथ बुला दो, क्योंकि उसने मुझे कहा था ये करने के लिए, उसने मुझे फोर्स किया था ये करने के लिए, वो रूठ गई थी तो मुझे करना पड़ा, वो नाराज हो गया तो मुझे करनी पड़ी, वहां ये सब नहीं चलेगा, वहां ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरे बच्चों से पूछ लो, बच्चों के लिए मुझे करना पड़ा, कोई नहीं सुनने वाला, मेरे मां बाप के कारण करना पड़ा, जो जवाब देना है आपको देना है, ये एक्सक्यूजे सोसाइटी के लिए ठीक है, मरने के बाद आपको अकेले डील करना है, पैदा होने से पहले भी अकेले ही डील करना है, और लाइफ में जितने सुख दुख दर्द जो कुछ आप सहते हो वो आपके अकेले की होता है, आप जब बीमार पड़ते हो उस बीमारी में जो कष्ट आपको होता है वो आपका ही होता है, रिलेटिव्स आपके साथ बैठ सकते हैं, दवाइयां खिला सकते हैं, आपको प्यार से बात कर सकते हैं, आपके दर्द कह सकते हैं कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ये सब आपको कर सकते हैं। हो सकता है 24-24 घंटे जागे हुए आपके साथ बैठे भी, पर दर्द तो आपको ही सहना है ना। तो सहना हमें है, भोगना मुझे है, अकेले कोई उसका शेयर नहीं कर सकता ना, पति पत्नी बच्चे मां बाप रिश्ता कोई नहीं। और ये इनका एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर होना चाहिए, पर क्योंकि इनका मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा असर नहीं होने के बावजूद भी मैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, और यही मेरे दुख का कारण होता है। अगर यही सोच के यही भाव पैदा करके आप दुनिया को एंजॉय करो, अपने फैमिली से लेकर दुनिया तक, पावर को भी एंजॉय करो, पैसे को भी एंजॉय करो, पर विद दैट डिटैचमेंट, तो वो आप बाकियों से बहुत अलग हो जाते हैं। ऊपर से नहीं, ऊपर से तो आप एक जैसे दिखते हैं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा रंग कपड़े पहनेंगे तो आप दिखेंगे कि आप सन्यासी हैं या त्यागी हैं। वो कपड़े बदलने वाले भी हमारे आपके तरह उतने ही दुखी हैं, अगर उनके माइंड को अच्छी तरह एनालाइज करो, पता लगा सको। मुश्किल है कि इंसान की मन को कोई नहीं जान सकता, इसलिए हर कोई बचा हुआ है। अगर ऐसा कोई पता लगने का मशीन आ जाए कि किसके मन में क्या चल रहा है, तो वो उर्दू में कहते ना, हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस संसार में जीना। तो जब आप उस मन से आप डिटैच्ड होते हैं, और दूसरा उसका क्या फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपके सोचने से फल ज्यादा मिलता है, न सोचने से फल कम मिलता है। कोई भी काम आप ऑनेस्टली करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, यूजिंग योर इंटेलेक्ट करते हैं, दिमाग भी लगानी पड़ती है अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, करने से सिर्फ नहीं होता, करना तो मजदूर भी करते हैं, वर्कर भी करते हैं, पर क्योंकि अपने दिमाग नहीं लगा पाते हैं इसलिए उनका लेवल कम हो जाता है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, यूजिंग योर इंटेलेक्ट करते हैं, तो नेचुरली फल तो मिलेगा ही, कहीं नहीं भी मिल सकता है, कहीं कोई गड़बड़ी हुई वो चेक करने की बात है। ये भी हम आगे अगले सत्संग में सुनेंगे, इसी चैप्टर में, कि हम लाइफ में जो काम करते हैं, कभी सक्सेस मिलता है, कभी फेल्योर मिलता है, किसी को पूरे जीवन सक्सेस मिलता है, किसी को फेल्योर ही मिलता है, क्यों होता है? क्यों हम जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हमेशा, या सब क्यों नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई भगवान की कर्ष है, अभिशाप है, अभाग्य खराब है, डेस्टिनी खराब है, नहीं। बड़ी लॉजिकली गीता इसी अगले संडे में आपका ये टॉपिक है समझाता है कि हम जो काम करते हैं वो अच्छा सफल होता है या नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, वो एनालाइज करने की जरूरत है। तो फल तो मिलता है, और फल मिलना ना मिलना बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तुम्हारे चाहने ना चाहने से फल नहीं मिलेगा। तुम तो अच्छा चाहकर गाड़ी चलाते हो, ढंग से चलाते हो, बिल्कुल परफेक्टली सारे रूल फॉलो करके चलाते हो। कोई जरूरी है कि आप परफेक्टली सारे रूल फॉलो करके गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक्सीडेंट होने या ना होने में। पर इसका अर्थ नहीं है कि आप रूल फॉलो मत करो। अगर आप रूल फॉलो करना बंद कर देते तो आपकी एक्सीडेंट की चांसेस 1000 गुना 2000 गुना बढ़ जाते हैं। स्मार्ट जो सन्यासी होता है, कपड़े क्या पहनना है उसको सन्यासी हम नहीं कहते हैं। आप में से भी कोई सन्यासी हो सकता है जो लाइफ को एंजॉय तो करे विथ डिटैचमेंट एंड विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रिवर्ड्स, क्या फल मिलेगा? काम पूरी तरह उससे वो सात्विक त्याग होता है। अगले चलिए, ना द्वेष्ट्या कुशलम कर्म, कुशले नानुषज्जते, त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। द मैन ऑफ रेनुंसिएशन, जिसको हम कहते हैं त्याग करने वाला व्यक्ति, imbued with purity, wise, and whose doubts have been dispelled, doesn't hate disagreeable acts, not clings to agreeable ones. So, जो real सन्यासी है, त्यागी है, तो क्या करता है वो? वो काम agreeable हो, उसको पसंद हो या नहीं हो, result favorable हो या नहीं हो, उसका वो परवाह नहीं करता। वो सिर्फ विदाउट एनी डाउट्स, विथ प्योर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने काम को करता है। अगर मैंने घर गृहस्थी बसाई है, मतलब अगर मैं, मेरे पति पत्नी बच्चे मां बाप हैं, और मैंने, ये मेरा चॉइस है कि मैंने शादी किया, बच्चे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि मुझे उनके प्रति कुछ ड्यूटीज हैं। विदाउट एनी डाउट ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और मुझे उनके लिए काम करना है। पर उस काम के साथ अटैचमेंट होना जरूरी नहीं है। जितना कम अटैचमेंट होगा, उतना आप एंजॉय करेंगे रिलेशनशिप को। होगा, अगर अटैचमेंट है तो बार बार आप मेंटली परेशान होंगे, ये सोचे बिना कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, बच्चे आपके रास्ते पर चले या नहीं चले। अगर आप अटैच्ड हैं तो आपको फर्क पड़ेगा। मैं चाहता था कि वो बने जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता था कि वो डॉक्टर बने या लॉयर बने, जो भी है, वो नहीं बना। और भला तो भला, चलो और कुछ बन जाता, डॉक्टर नहीं बना, लॉयर बन जाता, प्रोफेसर बन जाता, वो बना तो क्या, वो चीयर लीडर बन गया। अब वो जो बना वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आप इसीलिए आप दुखी रहेंगे जिंदगी भर। अगर आप इस भाव के साथ चले, मुझे 100% जीना है, बच्चों को जैसे जो मेरी एबिलिटी है, फाइनेंशियली एकेडमिकली जो भी मैं, मुझे उसके लिए करना है मैंने किया, जो भी सिखाना है सिखाया, जो संस्कार देना है दिया, आगे जाकर वो क्या बना उसकी मर्जी, वो रिजल्ट है ना, आपके मेहनत का रिजल्ट है कि बच्चा क्या बना। रिजल्ट में जो परवाह करते रहेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होता, दुख बढ़ता है। स्मार्ट कौन है कि पूरा एफर्ट लगाए, जो रिजल्ट हुआ ठीक है, अच्छा हुआ अच्छा, बुरा हुआ बुरा, सब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा इसमें कुछ नहीं है। पर ये भाव हमें, ये कब होगा, जब आपकी डाउट्स क्लियर हो। आपके साथ आपके बच्चों का क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रिस्टल क्लैरिटी हो आपके दिमाग में। आपके साथ आपके पति या पत्नी का कितना रिलेशनशिप है, उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, वो क्लियर कट आइडियाज होनी चाहिए। जब आप कहीं काम करते हैं, उस काम करते समय आपकी डाउट्स क्लियर होनी चाहिए। जब आप पूरी डाउट को क्लियर करके विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उस चीज को करते हैं, फल कुछ भी मिले आप केयर नहीं करते, फिर वो काम एग्रीएबल है या डिसएग्रीएबल है आप उसको एंजॉय करेंगे। आपने अपनी ड्यूटी निभाई, हाँ, ड्यूटी निभानी जरूरी है। बच्चे अगर खराब हो गए क्योंकि आपके नेग्लिजेंस के कारण, आपने पूरा मेहनत नहीं किया, आपने पूरा फोकस नहीं किया, दैट्स योर प्रॉब्लम, बट स्टिल यू डोंट नीड टू बी वरीड, जो करना था आप कर चुके हो। और वो कोई अच्छा आदमी का लक्षण नहीं है जो नेग्लिजेंट हो, जो क्रिमिनल हो, वो तो निषिद्ध है, वो तो फॉरबिडन है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो एफर्ट करता है, जो अच्छा है, वो सब एफर्ट के साथ जो भी रिजल्ट मिले, एग्रीएबल हो या डिसएग्रीएबल, जो दोनों सिचुएशन में एक्सेप्ट करता है, वो ज्यादा मेधावी होता है। मेधावी मीन्स ही और शी एक्चुअली इज ए वाइज पर्सन। आगे हम नेक्स्ट सत्संग में सुनेंगे, चर्चा में, कि सन्यासी और त्यागी क्या है, और ये भी हम देखेंगे कि जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट क्यों कभी कभी खराब होता है और कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी एग्रीएबल क्यों नहीं होता है, उसमें किसी ईश्वर का या हमारे भाग्य का दोष नहीं है, ये हमारे अपने काम में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाता है, कुछ गलतियां होती हैं, और वो कौन सी चीज फैक्टर हैं जिसको अगर हम ध्यान रखें तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे, या कभी भी हम सक्सेस हमारा कम होगा इसकी कोई चांस नहीं बचेगी। पर उन चीजों को ध्यान देना वो हम अगले संडे में सुनेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।